نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ہمارا آج کا سبق سورة آل عمران کی آیت نمبر 121 سے آیت نمبر 138 تک ہے. براہ راست آیتوں پر جانے سے پہلے کافی باتیں ہمیں سمجھنی ہوں گی اور یہاں سے یہ یاد رکھیے گا کہ سورة آل عمران کا دوسرا حصہ جو کہ اس وقت ہم پڑھ رہے تھے اس کے اندر سے بھی یعنی نصف ثانی کا دوسرا حصہ ہے. اگر پوری سورة کو دو حصوں میں بانٹیں تو جہاں سے دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے اب آگے اس کا پھر دوسرا حصہ ہے. تقریباً 6 رکوع یہاں سے شروع کرنے کے بعد غزوہ احد کے حالات اور واقعات اور ان کے تبصرے پر مشتمل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں وہ دو قسم کی تھیں. وہ جنگیں جس میں بنفس نفیس آپ خود شامل ہوئے اور جو بڑے پیمانے پہ تھیں ان کو غزوہ کہتے ہیں. اسی سے لفظ غازی بھی ہے یعنی جو کسی جنگ سے صحیح سلامت لوٹ آئے. اس کے برعکس چھوٹے غزوے یا چھوٹی جنگیں اور جن میں آپ خود تو نہیں گئے لیکن آپ نے دوسروں کو بھیجا اس کو سریا کہتے ہیں. سرایا ایک بہت ہی اہم بات ہے جس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ کو بہت حیرت ہوگی اور وہ کیا ہے, سوائے غزوہ احد کے کسی جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست نہیں ہوئی. اور غزوہ احد کی شکست بھی شروع میں نہیں تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی حکم عدولی کرنے یا اس کو بھول جانے یا اس کو پس پشت ڈالنے کی وجہ سے جیتی بھی جنگ ہار گئے. اور پوری ہار نہ بھی ہوئی ہونا تو میچ ڈرا ہو گیا, جس نے یہ سکھا دیا کہ امت جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرے گی, آپ کی سنتوں پہ چلے گی, آپ کے دیے ہوئے لائحہ عمل کو چوز کرے گی, تب تک اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں میں روب بھی ڈالے گا اور مدد بھی کرے گا. اور اس کے برعکس جیتی ہوئی جنگیں ہاری جاتی ہیں جب امیر کی اطاعت نہیں ہوتی. یہ تو ایک بہت بڑا ایک بنیادی سبق تھا, کیونکہ یہ کبھی ہوا نہیں کہ مسلمان دشمنوں سے تعداد میں, اسلحے میں اور باقی حالات میں بہتر ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ہمیشہ نان مسلمز اور کفار کے اسباب ذرائع یعنی ریسورسز مسلمانوں سے زیادہ ہی رہے, لیکن ایمان کی قوت اسلحے کی قوت سے بہت بڑی ہوتی ہے. یہ چیز ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حالات کو دیکھنے سے پتہ چلتی ہے. جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو دشمن بھی حیران تھے اور آج بھی ہسٹری لکھنے والے پریشان ہیں کہ یہ کیسے ہو جاتا تھا کہ نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جدید اسلحہ ہوتا تھا اور نہ اتنی زیادہ تعداد تھی جو کہ دوسروں کے پاس, لیکن یہ جیتتے تھے. لیکن غزوہ احد میں شکست تھی, چلیے اس کو مان لیا. عام طور پہ قوموں کا حال کیا ہے, یعنی پاکستان کس جنگ کو زیادہ یاد کرتا ہے؟ 6 ستمبر. کیوں؟ جیتے تھے, فتح ہوئی تھی. 71 کی وار کو اتنا نہیں ہائی لائٹ کیا جاتا, کیوں؟ کہ پاکستان آدھا ہو گیا تھا, ہے نا. عام طور پہ لوگ فتوحات کے گنگاتے ہیں, سیلیبریٹ کرتے ہیں, مناتے ہیں. اسلام کا مزاج دیکھیے کہ شکست والی جنگ پہ 60 کے قریب آیات نازل ہوئیں, یعنی اب تقریباً 60 آیات ہم مسلسل پڑھیں گے جس میں مورلز اینڈ لیسنز اینڈ انسیڈنسز حالات واقعات تبصرے اور اس میں سے سبق بتایا جا رہا ہے. کیا سمجھ آئی؟ اور اس میں آپ کو 101 بھی اگر آپ کہیں گے نا, گننا شروع کر دیں میں جو بات آتی ہے چھوٹی بڑی, 101 لیسنز بھی آپ اس میں سے نکال سکتے ہیں. یہ اتنی خوبصورت جنگ ہے, کیونکہ فتح کا نشہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت بڑا ہوتا ہے, جبکہ شکست کا جو توڑ ہوتا ہے, جو انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے نا شکست, وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے, جس کی وجہ سے انسان نیچے چلا جاتا ہے. مثلا آپ ٹیسٹ دیں, 25 میں سے آپ کے 25 20 22 24 آ گئے, بڑے خوش ہوں گے, اور 25 میں سے 2 آ جائیں تو آپ کا مورائل ڈاؤن ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جنگ میں جو مسلمانوں سے غلطی ہوئی اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے تسلیاں, دلاسے, امیدیں और बीच ही बीच में एक अच्छी लीडरशिप और एक अच्छी टीम की बातें बता दी। किसी भी जगह टीम को आपने डेवलप करना हो, बेहतरीन टॉपिक है। आप कुरान से एक एक लफ्ज लेके पढ़ा दें, आज ही देखिएगा आपको 20 चीज़ें मिलेंगी जो ज़िंदगी के हर फील्ड में, चाहे मैदान जंग हो, चाहे मैदान दावा हो, चाहे वो मस्जिदों का इंतज़ाम हो, चाहे स्कूलों का हो, चाहे एक बहुत बड़ी रियासत का हो, एक ख़ानदान का क्यों ना हो, एक आपके घर का क्यों ना हो, जो बेहतरीन कामयाबी के असूल हैं वो आपको इसमें इंशाल्लाह मिलेंगे। तब थोड़ी सी बात करूंगी गज़वे उहद पे, क्योंकि ये गज़वा इस्लाम में बहुत अहम है। सन 3 हिजरी में शवाल के महीने में ये पेश आया था। इससे पहले रमज़ान 2 हिजरी में गज़वा बदर पेश आ चुका था, वो आगे हम पढ़ेंगे सूरत अनफाल में। यहाँ मज़े की बात देखिए, तरतीब में सूरत आल इमरान पहले आ रही है, तो ये जो तरतीब मुसहफ में, ना तो ये ज़माने के एतबार से है और ना नज़ूल के एतबार से है। अगर आज हम होते ना इसकी जगह कुरान लिखते, हम सबसे पहले गज़वे बदर से टॉपिक शुरू करते, फतह हुई, कामयाबी हुई, वो 9 सुपारे पढ़ा कर आपको सूरत अनफाल में बताया जाएगा। इशारा आएगा बीच में इसमें, जैसे बदर में तुम्हारी मदद की नाम है, जैसे यहाँ आपको ऐसे लग रहा है कि आंखों देखा हाल है ना गज़वे उहद का, तो ये आपको सूरत अनफाल में दिखेगा। क्या पता चला, पहले गलतियों से सीखो। और यहाँ छोटी सी बातें, चंद चीज़ें जो आप सबके लिए भी बता दूँ, जो इंशाल्लाह आयत के पहले लफ्ज़ों में ही हम देख भी लेंगे, कि किसी भी फील्ड में कुर्बानी और जिहाद की रूह पैदा किए बगैर काम नहीं होता। इस्लाम का ये जो 5 नमाज़ों का वक्त है वो भी इसी लिए है, और जो बीच में जंगे और जिदाल आते हैं वो भी इसी लिए हैं। तो लिहाजा गज़वे बदर एक बिल्कुल अचानक जंग थी, मुसलमानों को ज़बरदस्त फतह हुई, कुफार को इतनी बड़ी चोट पड़ी कि वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। आप सोचिए ना कि आप छोड़ के आ गए हैं मक्का, वो पहले बिफरे हुए हैं और सोच रहे हैं कोई बात नहीं, ये 100-200 बंदा ही गया ना, पकड़ लेंगे इनको। पहली जंग में ही उन्होंने इनके 70 बड़े बड़े सरदार मारे गए, जिसमें सारे तकरीबन बड़े बड़े सरदार थे कुरैश के। अबू जहल भी उसी में था, उतबा, शैबा, रबिया, ये सब एक ख़ानदान के लोग थे, मारे गए। अहले मक्का के सीनों में इंतकाम की आग ऐसे भड़की कि इंतकाम के लावे उनके सीनों में खोल रहे थे। जो सामान बच के गया था मुसलमानों के हाथों से, उन्होंने वो सारा डोनेट कर दिया कि हम इसको अब मुसलमानों के खिलाफ हथियार इस्तेमाल करने पे तैयारियों में लगाएंगे। 1 साल तक तैयारियां की उन्होंने। जब अबू जहल मारा गया उसमें, तो कुरैश के सबसे बड़े सरदार फिर अबू सुफियान बने, चूंकि वो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, सहाबियत के मर्तबे पे फाइज नहीं हुए थे, बाद में हो गए थे, इसलिए हम उनका नाम इज्जत से लेंगे इंशाल्लाह। अबू सुफियान जो थे वो 3,000 का लश्कर लेकर मदीना पर चढ़ दौड़े। अहले मक्का अपनी फतह यकीनी बनाने के लिए इस दफा अपने बच्चों और ख़ास तौर पर ख़वातीन को भी साथ ले आए थे, क्योंकि औरतों और बच्चों को मैदान जंग के इर्द गिर्द देख कर गैरत बेदार होती थी उनके फौजियों की, कि अगर कहीं मैदान से हमारे कदम उखड़ गए तो हमारी औरतें मुसलमानों के कब्जे में जाएंगी। तो ये बात उनके लिए बहुत आर दिलाने वाली थी, तो कहते थे हमारे लोग जुर्रत से जीतेंगे। 20 के करीब तो वो सिर्फ गुलूकाराएं लेकर गए थे जो मिली नगमे गा गा कर मर्दों के हौसले बुलंद करेंगी, यानी औरत को वो एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करते थे गैरत के और जोश और जज्बा दिलाने के। हत्ता कि अबू सुफियान की जो बीवी थी हिंदा बिनत उतबा, वो भी वहां मौजूद थी, वो भी बाद में फतेह मक्का के मौके पर ईमान लाई थी। गज़वे बदर में हिंदा जो थी, इसका बाप, भाई और चचा तीनों मुसलमानों के हाथों मारे जा चुके थे, तो इस औरत के सीने में इंतकाम की आग थी। कहते हैं कि शायद ही मक्का का कोई घर ऐसा बचा हो जिसमें गज़वे बदर में कोई ना कोई मारा ना गया हो, तो कह लीजिए कि सारा मक्का जो था वो इंतकाम के जज्बे में चूर चूर था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली, आपने मशवरा करने के लिए एक मीटिंग बुला ली, यानी जब नबी सल्लम को खबर मिली तो आपने मजलिस शूरा बुलाई, क्या करें कैसे करें, 3,000 का लश्कर आ रहा है, अरे मक्का से चल पड़ा तो 1 हफ्ते में पहुंच भी जाएगा तकरीबन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना रुझान क्या था कि हम मदीना के अंदर रहकर ही मुकाबला करते हैं, क्योंकि अपने घर में होंगे ताकत ज़्यादा होगी, दुश्मन बाहर से आया हुआ है, मुकाबला ज़्यादा दिन नहीं कर सकेगा। इत्तफाक देखिए कि सेम यही राय अब्दुल्ला बिन उबई की भी थी, फ़र्क था दोनों की नीयतों का। देखने में अमल एक ही है, इस वक्त हम सब पढ़ रहे हैं, पर हमारी नीयतें फ़र्क हो सकती हैं। अब्दुल्ला बिन उबई ने बुजदिली की वजह से ऐसा सोचा था कि बाहर गए तो फिर तो नज़रों में आ जाएंगे, फिर तो मुकाबला करना पड़ेगा, फिर तो जाकर सबके बीच में लड़ना पड़ेगा। तो अगर अपने शहर में होंगे तो किसी को क्या पता कौन इस वक्त किधर है, कमरे में सोया हुआ या सुन रहा है या पढ़ रहा है या खा रहा है या नमाज पढ़ रहा है। या ऐसे ही अगर सारे मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेंगे तो सबको पता लग जाएगा कौन गया कौन नहीं। तो अगर घर में पढ़ लें तो लोग सोचेंगे पढ़ ली होगी, ये मुराद था। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उनकी राय हालात के मुताबिक थी, आपकी नज़र थी हालात पे कि हमारे पास अभी इतना, हमारे पास इतनी डिफेंसिव पावर नहीं है। खैर, कुछ नौजवान यंगस्टर्स आप जैसे जिनको गज़वे बदर में शिरकत का मौका नहीं मिला था, बाद में उन्होंने बदर में शरीक होने वाले लोगों की बड़ी तारीफें सुनी, बड़े फजाइल हैं क्या, जैसे आज हम भी कहते हैं वो पहले काम करने वाले बहुत अच्छे थे, पहले लोगों को अल्लाह दर्जे दे गया, अच्छा जो पहले थे वो तो पहले ही थे, असाबिकून अलवलून उलाइका हुमुल मुकर्रबून, है ना। तो बंदे का कभी कभी दिल चाहता है कि जो नेकी उसके हाथ से छुटी है मैं उसको दोबारा कर लूँ। तो जिनके हाथ से बदर की नेकी छुटी हुई थी उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो बैठ जाएंगे, हम भी मैदान जंग में डट कर दुश्मन का मुकाबला करेंगे, रह गई शहादत तो हमें तो चाहिए ही है, हम मौत से डरते तो नहीं है, शहादत है मतलूब व मकसूद है मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। चुनाच अल्लाह के नबी सल्लम ने यंगस्टर्स की राय की कदर की, लिखे ये बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी उम्र के लोगों के जज्बात का ख्याल किया कि चलो इनको मौका देते हैं, ये होता है रिस्क टेकर, और एक अच्छा लीडर हमेशा रिस्क लेने वाला होता है, क्योंकि जो गर्म खून होता है ना उसी में जोश और जज्बे होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1,000 लोग जमा हुए, निकल पड़े मदीना से, जबले उहद की तरफ कूच फरमाया। रास्ते में अब्दुल्ला बिन उबई अपने 300 आदमियों को साथ लेकर ये कहकर वापस चला गया कि जब हमारे मशवरे पर अमल ही नहीं हो रहा, हमारी बातें ही नहीं मानी जाती, तो हम खामखा अपनी जानों जोखों को खतरे में डालें। सोचिएगा जरा, तो निकले क्यों थे घर से, साथ क्यों दिया शुरू में? नहीं, याद रखिए, दिल का निफाक मंजिल तक नहीं पहुंचने देता, ये दिल की तख्ती पे लिख लें, किसी काम के, किसी प्रोजेक्ट के, किसी मंसूबे के आगाज में साथ होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अल्लाह मेरे जैसों को भी मौका देता है, आइए आप भी मीटिंग में बैठे, आइए आप भी अपना हिस्सा डालिए, कोई रह जाता भी आ जाता है, जैसे नजदी शेख की सूरत में पुलिस भी आ गया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल की साजिश के मौके पे। लेकिन किसी तहरीक या किसी प्रोजेक्ट की तकमील के वक्त जो लोग मौजूद होते हैं ना, जिस्मानी तौर पे नहीं मैं कह रही, दिली रूहानी कल्बी तौर पे, वो असल में सच्चे लोग होते हैं, वो यहीं से पलट जाए जिसे जान हो प्यारी। अब्दुल्ला बिन उबई ने बिल्कुल इस शेर का सबूत दिया, दिल में बुजदिली थी, और 300 को ले गया, इमेजिन कीजिएगा जरा, 300 को ले रहा है, क्या पता चला। लिखिए, उस दौर में भी जब नबी मौजूद, मदीना मौजूद, अभी नई नई हिजरत का असर मौजूद है, 1/3 ऑफ पीपल वर हिपोक्रेट, तीसरा हिस्सा लोग मुनाफिक ही थे। आज का हाल हो तो फिर क्या होगा, शायद एक आधा ही बचता, पीछे कितने रह गए, 700। इसी आयतों के हिस्से में आप पढ़ेंगे आगे जाके अल्लाह ने 3,000 फरिश्ते भेजने हैं, 300 गए हो ना, मैं 3,000 भेजूंगा। अल्लाह हर काम 10 की जरब के साथ ही करता है, कम से कम ये उसकी शान थी। जब ये 300 लोग गए ना तो कुछ और के भी दिल में गड़बड़ आ गई, जैसे यहां पाए तो 30 लोगों की जगह समझे कि 10 लोग बैठे हों, 20 बैठे हों, 15 हों, थोड़े लोग हों। आप सोचेंगे अच्छा सारे नहीं आए फिर मैं क्यों आ गई, और यहां आप सारे अभी बैठे हैं, अभी उठ उठ के एक एक बस्ता उठा के जाना शुरू कर दे, बाद में 8-10 लोग रह जाएं तो जो बैठे होंगे उनका दिल क्या होता है, शायद मैं ही बेवकूफ हूं जो सबसे पहले आके सबके आखिर तक जाती हूँ। तो उनको देखकर कुछ सच्चे मुखलिसों के दिल में भी ख्याल आया, उनका भी जिक्र आ रहा है, अल्लाह ने उनका दिल थाम लिया। अब्दुल्ला बिन उबै गया, अल्लाह ने कोई परवाह नहीं की, जाओ छोड़ो जगह खाली करो, बट वो दो ग्रोह, दो कबीले बनू सलमा वगैरह जाने लगे तो अल्लाह ने रोक लिया। ये भी एक अमल की बात है, जिनके दिलों में खैर होती है ना अल्लाह उनको जाने नहीं देता। लिख लें अपने लिए भी, हम सब इंसान हैं, हमारे अंदर कमजोरियां आती हैं, हम नेकियों के काम करते करते रुक जाते हैं, कई दफा 2-4 हाथ पीछे भी चले जाते हैं, इट्स ओके, ये नॉर्मल है, इट्स वेरी जनरल, बट अल्लाह बुला लेगा आपको वापस, अल्लाह सबब बनाएगा। मुझे कई सिस्टर्स की बातें याद आती हैं, कहती हैं जब मेरे हालात बिगड़े, जब मैंने कोर से पीछे होने की कोशिश की, अल्लाह ने फिर मेरा बाजू पकड़ लिया। मैं तो रुड़कती पुड़कती, जैसे पुल सरात से लोगों ने उतर के जाना है ना जन्नत में, मुझे ऐसे लगता है मेरा ये कोर्स हो कैसे गया। स्पेशली जब कोर्सेज पूरे होते हैं तो जो स्टूडेंट्स का फीडबैक आता है वो बहुत इमोशनल होता है। क्या मौका वो नहीं था जब मैं उतर हो जाती, वो हुआ, फलां मर गया, फलां चीख गया, उधर गई उधर गई, तो मैं तो हारिसार बनू। सलमा कबीला ने भी सोचा हम जाते हैं पर अल्लाह ने रोक लिया। तो इसमें अपने लिए अमल की बात लिखे कि अगर अभी तक अल्लाह ने हमें रोका हुआ है ना, तो ये इस बात की दलील है कि हमारे अंदर खैर है और अल्लाह ताला हमारी इस खैर को इस्तेमाल करना चाहता है। खैर, जंग हुई, मदद तो आनी थी अल्लाह की तरफ से, उधर से ही आई। अल्लाह ने लश्कर इस्लाम को फतह दे दी, मुशरिकीन के कदम उखड़ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद पहाड़ को अपनी पुश्त के पीछे रखा, यानी आपकी जो सफ बंदी थी ना, ये नाकाबले बयान थी। आप पढ़िए नबी सल्लम एज अ जर्नैल, उसमें आपको आपकी खूबियां दिखेंगी। उहद पहाड़ ऊंचा था ना, तो आपने उसको बैक पे कर दिया और उसके आगे आगे मैदान जंग चूज किया। दुश्मन सामने से आएगा, पीछे से आने का फिक्र नहीं है। एक छोटा सा दर्रा, यानी उहद पहाड़ के साथ आज भी वो जगह मौजूद है, और जब हम लास्ट फरवरी में गए तो हमें जो सात आलिम थे उन्होंने दिखाया कि ये था वो दर्रा। तो मेरी तो अजीब कैफियत थी, मुझे गज़वे उहद पढ़ के सुन के बस अपना ये पूरा तालीमी और तबलीगी सफ़र याद आ जाता है। मैंने कहा ये छोटी सी जगह इतने लोगों की आजमाइश का जरिया बन गई। आपने क्या किया कि ये छोटी जगह, अब जब लोग मक्का से आ रहे हैं ना, तो इसकी तरफ से आने का खतरा हो सकता है। मुसलमान यहाँ लड़ रहे हैं, पूरे इसका नक्शा बना हुआ है, अगर आप चाहें तो किताबों में भी आपको मिलता है, रही को मखतूम में भी है, खोल के देखिएगा। ऐसे जैसे प्याला नहीं होता, चारों तरफ पहाड़ ऊंचे और नीचे मैदान गहरा, और सब तरफ से दुश्मन के आने का खतरा नहीं हो सकता था, लेकिन एक तरफ से थोड़ा सा खतरा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था, और दर्रा था, यानी ऐसे जैसे एक रास्ता बना हुआ है कि अगर इधर से हम पे हमला हुआ तो हम तो दो तरफ से चक्की के पाटों में बिस जाएंगे, आगे भी दुश्मन पीछे से भी दुश्मन। चुनाचे आपने अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हो को अमीर बनाया, लीडर बनाया, आप कह ले ग्रुप लीडर बना लिया, या उनको जो काम दिया, 50 लोग उनके अंडर कर दिए कि जाइए आप इधर इधर रुकिए, और आपने सबकी जगह मुकर्रर की, या आपने बैठना इधर, आप ये जगह नहीं छोड़ सकते, आप इधर नहीं, यानी जो जगह कही वहीं खड़े रहना, और साथ ही कहा कि तुमने यहां से हिलना नहीं है। तुम देखो कि हम सारे मारे गए, हमारा गोश्त चीले और कौवे नोच के खा रहे हैं, तब भी ये जगह ना छोड़ना। फतह हो गई, अल्लाह के नबी की बातें माने, फतह ना हो ये कैसे हो सकता है। और जब फतह हो गई, सारे अपनी जगह से हटे, तो जो दर्रे पे मामूर लोग थे उनमें इख्तलाफ राय हो गया। बाज ने कहा कि अल्लाह के नबी ने जो इंस्ट्रक्शन दी थी बस वो तो फतह होने तक थी, वो तो हो गई, हम जीत गए, शिकस्त तो हुई नहीं है, फतह हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि दूसरे लोग माले गनीमत जमा करना शुरू हो गए। उस दौर में अभी तक क्लैरिटी नहीं थी, लोगों को लगा कि जिसने जो माल जमा किया वो उसका हो गया। दूसरा, इनको लगा कि बस खत्म, जैसे अक्सर प्रोग्रामों के आखिर में हड़बूंग मच जाती है, डिसऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाती है, यही हुआ। अब्दुल्ला बिन जुबैर वहां खड़े रहे, मना करते रहे, ना जाओ ना जाओ, अल्लाह के नबी का हुक्म याद रखो, लेकिन वो अपने दिल में आपके हुक्म की तावील कर चुके थे, लिखे जानबूझ के उन्होंने नबी की नाफरमानी नहीं की, तावीलों में पड़ गए, हीले में पड़ गए, इट्स ओके, ये तो नहीं, मना तो नहीं किया, ना रोका तो नहीं। हत्ता के बाज़ कहते हैं कि 40 और बाज़ कहते हैं 35 लोग दर्रा छोड़ के चले गए, तो अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ 10-15 लोग बाकी रह गए, दैट्स इट। खालिद बिन वलीद, जो अभी तक उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, वो मुशरिकीन की घुड़सवार फौज, कैवलरी होती है ना जो घोड़ों पे आते हैं, उनके कमांडर थे और बहुत बड़े लीडर थे। खालिद बिन वलीद ने जैसे बाद में इस्लाम को अपनी खिदमत दी, तो पहले कुफर को दे चुके थे, कहते हैं उकाबी निगाह थी उनकी, ईगल आई, दूर से उन्होंने देख लिया कि दर्रा खाली है, और जो इनकी पैदल फौज थी वो तो शिकस्त खा चुकी, इन्फेंट्री जो शुरू में आके सामने वो तो हार गए, भगदड़ मच चुकी है। ये उस जगह को ताड़ते हुए अपने साथ 200 घुड़सवारों को लेकर दस्ते के रास्ते से उहद का चक्कर काटकर पुश इस दर्रे पर मुसलमानों पर हमला करने लग गए। मुसलमानों को नहीं पता चला पीछे से दुश्मन आ रहे हैं, वो तो अपना माले गनीमत जमा कर रहे थे। 10-15 लोगों ने देखा, लेकिन क्या करते, वो तो 200 लोग थे, चले वहां पे जाके मुजाहमत शुरू हुई, और ऐसा मामला हुआ कि मुसलमानों के अंदर एक ख्यास आ गया, पूरी पूरी जंग का नक्शा बदल गया, यानी जो पैदल दुश्मन के साथी थे उनके हाथों मुसलमान जीत गए, लेकिन उनके घुड़सवारों के हाथों मुसलमान भी शिकस्त में आ गए। 70 सहाबे कराम शहीद हो गए, नबी सल्लम भी जख्मी हुए। खौत, ये जो एक हेलमेट टाइप चीज़ होती है जिसके आगे लोहे की संगलियाँ सी लटकी होती हैं एहतियात के लिए और हिफाजत के लिए होता है, वो आपके रुखसार में, यहाँ ये देखिए, ये जो चीख के ऊपर हड्डी होती है ना, अगर कभी आप दांत काट के देखें चीखें निकल जाएंगी, ये बिल्कुल ये इसके अंदर वो चेन खुल के आपके अंदर फंस गई, जैसे कभी आपने वाली पहनी और कान में फंस जाए तो क्या होगा। और वो इतनी जबरदस्त फंसी कि खून निकल आया, दांत मुबारक शहीद हो गया, इतना खून बहा कि आप ऑलमोस्ट बेहोश हो गए। इतने में देखिए कि अल्लाह का हुक्म देखिए कि मुसब बिन उमैर शहीद हो गए, और मुसब बिन उमैर की शक्ल नबी सल्लम से बहुत मिलती थी। एक तो नबी सल्लम का जख्मी होना, दूसरा मुसब बिन उमैर का इंतकाल, अफवाह फैल गई कि नबी सल्लम का इंतकाल हो गया। बस वही वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, वो आयतें नाजिल हो गई। खैर, मुसलमानों के हौसले पस्त हुए। जब अल्लाह के नबी को होश आए तो उन्होंने पुकारा, इबाद इलैया, मेरी तरफ आओ अल्लाह के बंदो, मेरी तरफ आओ, इधर आओ। सबको जमा किया, अब सबको होश जब आ गया, कुछ तो कहने लगे, अबू सुफियान के साथ जाके मिल जाते हैं, पनाह लेते हैं, अपने पुराने वतन पे चलते हैं, हाय शुक्र है हमने पिछली निस्बतें नहीं तोड़ी, वरना आज तो उन्होंने मरे जनाजे भी नहीं थे पढ़ाने। यानी इस किस्म की दोरंगी चाल आ गई कि बड़े इखलास से कई सालों से इस्लाम का साथ देने वाले भी लुढ़क गए, क्योंकि मुश्किलों में पता चलता है, जब कश्तियाँ हचकोले खाती है ना, फिर ही पता चलता है कि कौन उसके साथ मुखलस है और कौन नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दोबारा जमा किया, ओहद पहाड़ पर चढ़ गए। इस मौके पे अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद, जो दोनों थे, उनके बीच में झगड़ा हो गया, इख्तलाफ राय हुआ। खालिद बिन वलीद का कहना था कि हम इनके पीछे पहाड़ पर चढ़े, हमें चढ़ना चाहिए और ख़त्म करके दम लें, लेकिन अबू सुफियान जो थे वो बड़े हकीकत पसंद और जीरक शख्स थे, बहुत समझदार थे, जीनियस। उन्होंने कहा कि नहीं, मुसलमान ऊंचाई पर हैं, वो ऊपर से पत्थर फेंकेंगे और तीर बरसाएंगे तो हमारा शदीद जानी नुकसान होने का खतरा है, हमने बदर का बदला ले लिया है और यही बहुत है। यानी 70 साहबा शहीद हो गए, उधर भी 70 थे, इधर भी 70 थे। चुनाचे मुशरिकीन वहां से चले गए, जब गए तो ना कुछ लेकर गए ना कुछ देकर गए, आप कह लीजिए कि बात ड्रॉ हो गई। ये आयत 121 से तकरीबन अगली 60 आयतें इसी मजमून पे हैं। समझ के आता है हमें, हमारे लिए इसमें ये बात है कि अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को याद रखिए कि अल्लाह ने हमसे अपने दीन की खिदमत का जो काम लेना है ना, उसके अंदर भी ये सारे मरहले आएंगे। आइए आयत को पढ़ते हैं, मेरे लिए पहली ही आयत में बहुत कुछ मिल जाएगा, फिर आगे तो इंशाल्लाह जाएंगे। और याद रखिएगा पिछली आयत में क्या गुजरा है, पिछली आयत को पढ़े बगैर, पिछले सबक की आखिरी आयत को समझे बगैर अगला सबक शुरू करना से आती है। क्या पढ़ी थी आयत पीछे, किन की मकारियों और किन की साजिशों का जिक्र था, गैर मुस्लिमों की। मुसलमानों से क्या कहा था, इन तमसस कुम हसना तो इन तसू हम, तुम्हें कोई भलाई मिले तो इनका दिल जल जाता है, तुम्हें कोई तकलीफ मिले तो खुशियां देते हैं। अब ये वाक्य आ गया असल में इसी सिनेरियो में, वो जिसको कहते थे कि मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। तो ग़ज़वा उहद हकीकत पे मुसलमानों के लिए एक सबक है, कल के नहीं आज के मुसलमानों के लिए भी ये सबक है। आइए देखते हैं, वइस गदौत मिन अहलिका तुबव्विल मोमिनीना मक़ाइद लिल्क़िताल वल्लाहु समीउन अलीम। ऐ नबी, उस वक्त को भी याद कीजिए जब सुबह ही सुबह आप अपने घर से निकलकर मुसलमानों को मैदान जंग में लड़ाई के मोर्चों पर बाकायदा बिठा रहे थे, अल्लाह ताला सुनने और जानने वाला था। सुबहान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बात है, अल्लाह के नबी सल्लम सुबह सुबह निकले। लफ्ज़ गदौत आया है, गदूफ कहते हैं सुबह को, जैसे एएम्स एंड पीएम्स होते हैं ना इंग्लिश में, बिल्कुल वही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद की सुबह हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा के हुजरे से बरामद हुए और मैदान जंग में सफ बंदी कर रहे थे, वहाँ मोर्चे मुतय्यन कर रहे थे और सहाबा की जगह डायग्नोज कर रहे थे कि किसको कहाँ बैठना है। उसका तस्करा करके कह दिया, वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह ताला खूब सुनने और जानने वाला है। लफ्ज़ जो गदूव है ना, गदूव या गदौता, गैन दाल वाव से है, गदूव व तू कहते हैं सुबह सवेरे, इंग्लिश में इसका तर्जमा लिख ले अर्ली मॉर्निंग। एक होती है मॉर्निंग, एक होती इवनिंग, लेकिन एक होती है आफ्टरनून, फर्क है ना। अर्ली मॉर्निंग को गदुव कहते हैं, आम सुबह को नहीं कहते, दिन का इब्तदाई हिस्सा। गदा अलैही गदुवन कहते हैं इसके पास सुबह सवेरे गया। मुस्तकबिल के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और गदुव कहते हैं टुमारो को भी। ये भी लिख लें, एक होता है यस्टरडे और एक होता है टुमारो। गुजरे हुए कल को क्या कहते हैं? यस्टरडे। आने वाले को कहते हैं टुमारो। तो गदुव कहते हैं टुमारो को, कल वाले को। आज को क्या कहते हैं? टूडे। ठीक है, तो आने वाले कल के लिए यही लफ्ज़ आप पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह सूरत हशर में। मा कद्दमत लिगत वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगत। हर नफ्स को चाहिए कि वो देख ले कि उसने अपने मुस्तकबिल के लिए क्या तैयार किया है, आखरत मुराद है। इसी तरह गदा, यही लफ्ज़ है, इन्हीं को इधर उधर कर रही हूँ। गदा उन कहते हैं दिन के खाने को, नाश्ता। फतूर भी कहते हैं उसको, फतूर फतरा से इफ्तार करना, सैरी का खाना सुबह का। तो गदा आप नाश्ते को कह सकते हैं, सुबह सुबह जो खाते हैं, जिसको आप ब्रंच कह लीजिए। ना लंच होता है ना नाश्ता होता है, बल्कि बीच का वक्त होता है। इसी तरह गदा फेल नाकिस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जिसका मानी होता है सारा, यानी जाना, निकलने का मानी भी इसमें आ जाता है। अच्छा, गदुव है अर्ली मॉर्निंग, तो इसका ऑपोजिट भी कोई होगा? कोई बताएगा आप में से? कुरान के अंदर कई जगह आया है, बिल गदुव विवल आसाल। शाबाश, अलिफ स्वाद अलिफ लाम, वही लफ्ज है इसमें। इसी तरह सूरत नाम में गदुवा तक के मुकाबले में अशीशा कभी आया है, यानी ये सारे टाइमिंग के लिए यूज करने वाले मुख्तलिफ अल्फाज हैं। तो क्या पता चला कि आपको अल्लाह के काम के लिए सुबह सुबह निकलना पड़ा, और हकीकत भी यही है। लिखिएगा, बहुत बड़ी बात है, आपको लगेगा मैं आपको सुना रही हूँ, लेकिन अल्लाह की कसम, अल्लाह का कुरान ये मुझे सुना रहा है, और हर उस बंदे को सुना रहा है जिसने नियत कर ली है कि अल्लाह मुझसे कोई बड़ा काम करा ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकलने की बात क्यों हुई? देखिए, गदौता वाहिद है, गदौ तुम नहीं कहा, तुम सारे ही निकले, निकले तो सारे ही थे, बट नबी सल्लम का आम सहाबा से पहले निकलना मुराद है। किसी काम पे लीडर्स जब तक खुद वक्त से पहले नहीं पहुंचेंगे, फॉलोअर्स कभी भी नहीं आएंगे। याद रखिए, हर जगह काम करने वाले एक ही बराबर होते हैं, बट कुछ खूबियां लीडर्स बना देती हैं, उन्हीं में से लीडर्स निकलते हैं, और उनमें एक खूबी क्या होती है कि वो दूसरों से पहले जाते हैं। एयर होस्टेसेस और जहाज का अमला अगर इस सवारियों के साथ जहाज में जाएगा तो क्या होगा? वेटर्स और वेट्रेसेस और हॉल के अंदर मेंटेनेंस करने वाले गेस्ट के साथ अगर वहां शादी में पहुंचेंगे तो शादी कैसी रहेगी? बाकी बातें आप खुद समझ लें। आप अपने घर में उस वक्त दाखिल हुई जब आपके मेहमान भी आगे साथी, तो दावत कैसी पकेगी? आप तो अपने शौहर के जाने के पहले या उसके करीब पहुंच जाएं तो शौहर को ठीक तरह खाना ना आप दे सकें, बच्चों को ना दे सकें। तो लिखिए, लीडरशिप के दर्जे पे वही बंदा फाइज रहेगा जो अपने वक्त का ख्याल रखेगा। जो वक्त आपको दे दिया गया, आप उस वक्त की पैरवी करें। और मैं पूरे दर्द और तकलीफ के साथ कह सकती हूँ, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हैं, जज्बे भी बहुत हैं, तड़प भी होगी, बट सिर्फ इस एक आदत को मेंटेन ना करने की वजह से वो पीछे रह गए। हमसे बहुत ज़्यादा खूबियों वाले लोग मौजूद हैं अभी भी शहर में। किसी की सुस्ती आड़े आ गई, किसी की नरम मिजाजी, किसी का हसास होना आड़े आ गया, किसी का सेल्फ प्रोजेक्शन आगे आ गया, किसी न किसी चीज़ की ओट में वो छुप गए और ये वाला काम ना कर सके जो कि अल्लाह ने यहाँ बता दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही चीज़ रखी। दूसरी बात है कि सुबह सवेरे, इसमें एक बरकत होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए सुबह में बरकत रख दी गई, जन्नत का वक्त भी सुबह का होगा। आपको पता जो फजर के बाद का वक्त है, और कभी बाहर जा के देखा होगा आपने, मुझे इत्तफाक हो रहा है दो दिन से किसी बच्चे को स्कूल छोड़ने के सिलसिले में मैं वो मंजर देख पा रही हूँ जो शायद उस वक्त आमतौर पर मैं नहीं देख पा रही थी। मैं सोचती हूँ इतने सुबह सवेरे निकल कर लोग सड़कों पे, रोड्स पे, और सैकड़ों की तादाद में बच्चे स्कूलों में पहुंच चुके होते हैं, जिस वक्त अभी यही हमारे अपने मुसलमानों ने नमाज भी नहीं पढ़ी होती। वजह क्या? उनको यकीन है कि ये 2.5 फुट का बच्चा अगर अपने वक्त पे सुबह सवेरे स्कूल ना पहुंचा तो हम इसकी अच्छी तरबियत नहीं कर सकेंगे। आपने कभी सोचा, अकल से सोचें अगर पूछें, कि बच्चों के लिए सुबह उठना कितना मुश्किल है? हर माँ को मुश्किल लगता है, बच्चे बैड मूड में ही उठते हैं, टीचर जो भी वहाँ बेचारियाँ इतनी उनकी हेल्प करती हैं, सबको मुश्किल है। तो क्यों ना बच्चों की क्लासें 12 बजे शुरू कर दें, 8 घंटे रखना है ना, 12 to 8 कर दें। कौन सा सो जाते हैं बच्चे आगे? हर दुनिया के हिस्से में देखिए और मुहज्जब मुल्कों में देख लीजिए, बच्चों को सुबह सवेरे स्कूलों में भेजते हैं 7 बजे 8 बजे, 7 बजे 8 बजे। इसकी एक हिकमत है, उस वक्त इंसान को एक एनर्जी मिलती है। और मैं ये सोच रही थी कि बच्चों के स्कूल से 1-2 मिनट लेट होने को इतना बड़ा मसला बनाने वाले पेरेंट्स खुद शायद ही कभी वक्त पे पहुंचे हों। हम बच्चे को भेज के कहते हैं आराम से, आह अब सोऊंगी, अब नाश्ता करती हूँ। भाई तुम्हारी क्लास नहीं, मैं तो 11 से पहले मैं नहीं जा सकती, अब तो मेरे रिलैक्स होने का वक्त है। याद रखिएगा कि लीडर्स हमेशा आगे होते हैं, वरना वो फॉलोअर्स बन जाएंगे। और दूसरी बात है कि मिनाहली का, हजरत आयशा से आपसे मोहब्बत भी ज्यादा थी ना आपको, तो उन्हीं के घर से निकले। तो यहाँ नोट कीजिएगा, मुझे आपको भी अल्लाह के दीन के काम के लिए कई इमोशनली सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपके शौहर का दिल चाह रहा है आप घर में रहें, जब मैं जाता हूँ तब आप जाएं, मैं छुट्टी करूँ तो आप भी छुट्टी करें, मेरे काम से आने से पहले आप आके बैठी हो, लेकिन नहीं कर सकते। उनका दिल करता है मैं आपके बगैर नहीं खाऊंगा, भी खाना पड़ेगा। वो कहते हैं कि आप घर में नहीं होंगी तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, भी होना पड़ेगा, क्योंकि तुबव्विल मोमिनीन मकायदा लिल किताल। देखिए आप में से मेरे की जिंदगी में जिहाद तो नहीं है, ये नुक्ते आगाज है फजर की नमाज का। इस्लाम ने ये जो 5 वक्त की नमाज और फजर की नमाज अंधेरे में रख दी है ना, ये इखलास के पैदा करने लिए इबादत है। अगर आपके बच्चे और आपके मर्द और अगर अल्लाह आपको भी मुझे भी तौफीक दे, अगर फजर की नमाज के लिए घर से निकल सकते हैं ना, ये इस बात की इंडिकेशन है कि हम कल दुश्मन के आने पर भी निकल आएंगे। किसी का बहुत अच्छा कमेंट था कि अगर सारे मुसलमान फजर की नमाज पे उठ के मस्जिदों में आ जाएं तो दुश्मन डर जाएगा कि ये कौम अब जाग उठी है। ये सोई हुई मुर्दा कौमों की अलामत है कि ये अपने दूसरे कामों के साथ सोते और जागते हैं, लेकिन अल्लाह के मुकर्रर किए हुए कामों के साथ ये नहीं होते। तो इस चीज़ को भी जहन में रखने की ज़रूरत है। ये जो लफ्ज़ है ना तुबवी, बाउ से है, बा वाउ हमज़ा इसका रूट है, बा अयबू बउअन का मानी होता है किसी की तरफ लौटना और रजू करना, लौटना पलटना, मुवाफिक होना मुताबिक होना। इसी तरह इकरार और एतराफ़ करने के लिए ये लफ्ज़ भी आता है और बोझ उठाने के लिए भी आता है। बराबर होना, जैसे जमीन को हमवार करते हैं ना। मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि ये लफ्ज़ हमने कहीं पीछे पढ़ा? सूरत बकरा में वबाउ बिगदबिम मिन अल्लाह, सूरत बकरा 61, वो पलटे या लौटे अल्लाह के गजब के साथ, यानी उन्होंने अपने ऊपर अल्लाह के गजब को डलवा लिया। तो क्या पता चला कि ये पलटना ये बहुत कुछ है। इसी से बॉस है ना अल मबाअतु, कहते हैं छत्ते को, छत्ता, ये जो मक्खियां अपने लिए बना लेती है ना। और भी इसके बहुत सारे लफ्ज़ हैं, इंशाल्लाह आगे भी आना है लफ्ज़, वहां भी बताऊंगी। मकाइद का लफ्ज़ थोड़ा सा नया है, कायदा से, काफ ऐन दाल है। कऊद कहते हैं बैठने को और कायद कहते हैं उसकी जमा को। तो मकाइद फिर क्या हुआ, जिस जगह पे बैठा जाता है, यानी वो जगह जहां किसी ने खड़े होकर लड़ना है। मकायदून और कायदून का लफ्ज़ होता है ना, वो इसी से, बैठ रहने वाले, इसके ऑपोजिट मुजाहिदून होते हैं। यहाँ मकाय से मुराद वो जगह जहाँ पे सहाबा ने लड़ना था, जो उनकी जगह थी। और यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन को भी समझ लें, किसी प्रोजेक्ट की कामयाबी का प्लान इसे एक आयत में है। नंबर एक, लीडर दूसरों से पहले जाए। नंबर दो, सुबह सवेरे अपने कामों को शुरू करें। नंबर तीन, तुबव्विल मोमिनीन, हर एक को उनकी ड्यूटी लिस्टें बताएं, उनको काम करने क्या करना है। फिर नंबर चार, मकायदा लिल किताल, सब के बैठने की जगह मुकर्रर करें, यानी ऑर्गेनाइजेशन करें। और ये सब कुछ करके अल्लाह को कह दे कि वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह ताला आप मेरे इस अजर को ज़ाया नहीं करेंगे, मुझे यकीन है कि आप मेरा अजर ज़ाया नहीं होने देंगे। तो ऑर्गेनाइज्ड कौमें आज भी दुनिया के नक्शे पे उभरी हुई हैं। आप नोट करके देखिए, आज हम मुसलमान कहाँ कमज़ोर हुए, जहाँ हम ढीले हुए। एयरपोर्ट्स को ले लीजिए, बसों को ले लीजिए, टैक्सियों को ले, 10-15 मिनट की देरी तो एक आम बात है। हम कहते हैं इतना तो हो ही जाता है। टाइम लिखते हैं 7 बजे का, शादी में 9 बजे तक सारे आ जाएंगे। रुख्सती का टाइम ये लिखा था तो उसमें 2 घंटे तो लोग ऐड करेंगे। और अगर कोई बेवकूफ़ कार्ड पढ़ के उस वक्त पे आ जाए जो असल में कार्ड पे लिखा था, तो वो वेटर्स को टेबलों के ऊपर कपड़े बिछाता हुआ भी देख ले। इज इट ट्रू? हम कितनी ताखीर का शिकार हो जाते हैं, कभी आपने सोचा? और जो मुहज्जब मुल्क है, आप देखते हैं सिर्फ 1 या 2 मिनट की देरी पे बस आपकी आंखों के सामने से चली जाती है, वो नहीं रोकते, क्योंकि फिर वो हर जगह से लेट होंगे, हर जगह हम जैसे 2-4 लोग तो होंगे। तो यहाँ मोर्चा बंदियों की बातें हैं, लोगों को असाइन करने की बातें हैं। आज कुछ लोग बड़ा शोर मचाते हैं, हमें काम करने का मौका दें, हम ये करना चाहते हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमें कुछ करना है, हम करके दिखाएंगे। अच्छा भी करें, ये नहीं पता क्या करें, कैसे करें, करना नहीं आता, बस ख्वाहिश है, उसी को वो अपनी स्किल्स कहते हैं। और वो कहते हैं हमारे पास बड़ी खूबियां। यकीन करें ऐसे 10 लोगों को मैं जानती हूँ जो शोर इतना मचाते हैं कि अल्लाह की पनाह, वो कहते हैं हमारे सिवा कोई बंदा ही नहीं काम करता। अच्छा भाई करें, आप क्यों नहीं कर रहे? अब ये मसला वो मसला, यानी सिर्फ दिमाग हर वक्त घूमता है क्या मसला पेश करके अपनी बात को पीछे करो। भाई लिख के दें कोई पता नहीं, कोई आपके पास प्रपोजल फॉर्म है कुछ नहीं है, कोई मैनेजमेंट प्लान है कुछ है, कोई लोगों को ड्यूटियां पता है कुछ नहीं, और जब बात करनी है कि अगला बंदा जल के राख हो जाए। याद रखिएगा, अगर मेरे अंदर कोई कमजोरी है, मैं उसको सीख लूं, या मैं अपनी उस कमजोरी को दूर करने के लिए ऐसा बंदा अपने साथ रख लूं अपना हेल्पर कि जो मुझे असिस्ट करे। लेकिन दुनिया की इस नक्शे में बगैर ऑर्गेनाइज्ड किए कोई चीज पनपती फलती मैंने नहीं देखी। शुरू बहुत अच्छी होती है। अभी इस पिछले साल पाकिस्तान में गए तो लाहौर एयरपोर्ट था गालिबन या कराची का था, हमारी आंखों के सामने ही दोनों बने हैं। हमें कराची का भी नया एयरपोर्ट याद है कब बना था, और लाहौर का तो बने हुए शायद 8-10 साल हुए। लिफ्ट में नीचे से ऊपर गए ट्रॉली लेकर, यकीन करें कि यहाँ भी आपको लिफ्टों के साथ जो बटन लगे होते हैं ना, तो वहाँ वो बटनों की तारे बाहर रुक लगे, तो बाहर आर्टिफिशियल सा लकड़ी का डब्बा लगा के और उसमें से ऑन एंड ऑफ कर रहे थे। अगर यहाँ बाहर के मुल्कों में ऐसा खतरनाक सिस्टम होता, वो बाहर बड़ी बड़ी बैन लगाते कि इस लिफ्ट के कोई करीब ना जाए, इसके बिजली के तार बाहर हैं, और नीचे डंडिया से लकड़ी का लगाया हुआ, इससे पता चल रहा है कि मैनेजमेंट वालों को पता है कि ये गड़बड़ है। बाथरूम में जाए टूटियां लीक कर रही हैं। तो मैं सोच में पड़ गई, 8-10 साल में हमारा ये हाल हो गया एक एयरपोर्ट का, तो हमने इस मुल्क की हिफाजत कैसे करनी है? लोग कहते हैं उन्होंने सड़क अच्छी बनाई नहीं, इसलिए 2 साल में सड़क के पत्थर थे वो निकल गए। ये आज हमारी कमजोरी है। सबको भूल जाए, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे सबसे ज्यादा परवाह आपके इस काम की है। मैं आप सबको नसीहत करूंगी, आप तो न्यू बॉर्न बेबीज की तरह आज चौथे पारे पे है ना, आपके अंदर से अल्लाह ने मुस्तकबिल के लीडर्स, ग्रुप लीडर्स, कोर्स इंचार्जेस, क्लास इंचार्जेस निकालने हैं। आपका ख्याल है वो आगे बढ़ेगा जिसको तर्जमा फरफर आता है, जिसकी तजवीद बड़ी अच्छी है, जो ग्रामर बड़ी अच्छी बोलता है? नेवर। ये काम आपके इंडिविजुअल है। जो चीज आपको हेल्पर्स में लेकर आती है, जो अंसारुल्ला में लाती है ना, वो आपका ऑर्गेनाइज्ड होना है। तड़प वाले भी रहते हैं उसमें, पर वो सारी उम्र माजरतें कर करके दुनिया से चले जाएंगे। अल्लाह उनके जज्बों से उनसे काम लेता है। सक्सेसफुल लीडर वो होता है, अंदर तड़प, अंदर गर्मी है, जज्बे भी हैं। ये नहीं कि थोड़े दिन बाद के मोटिवेशन ही नहीं मिलता, कोई मोटिवेशन दे ही नहीं रहा, मैं तो बोर हो गया हूं, मेरे लिए तो अब कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, फिर ईमान कमजोर है आपका, फिर आपको इनला के समीउन अलीम होने का यकीन नहीं। दूसरी तरफ अपनी कमियां दूर करें। आपको पता है कि अमेरिका का सदर जब सदर बनता है ना, तो उससे पहले कई महीने का, या उससे पहले या उसके बाद, उसको सेल्फ ग्रूमिंग के कोर्स कराते हैं। उनके पास हर वक्त ट्रेनर्स बैठे होते हैं, 1-1 लाख रुपया देकर वो 1-1 2-2 घंटे का उनको सेशन देते हैं। ये मेरे पास सारी चीजें मौजूद हैं प्रूफ्स में। हमारे अपने मुल्कों के सदर वजीर जो बड़े बड़े गुजरे, उन्होंने अपने पास हर वक्त ट्रेनर रखे होते थे, कैसे बात करूं मैं, क्या बात करूं, मेरी क्या कमजोरी है, क्योंकि इन्होंने जाके अब अगर यूएनओ में स्पीच करनी है तो जैसी स्पीचें हम करते हैं वो करने लग जाए तो सारे ही चले जाएंगे कि ये क्या करते हैं, हमें तो बात भी नहीं सही करनी आती। मैं खुद सोचती हूँ कि अभी तो हमारी बातों के जुमले ही नहीं सीधे होते, हमने दूसरों के दिल में अपनी बातें कहाँ उतारनी है। तो सेल्फ ग्रूमिंग, हर बंदा अपने आप को पेश कर दे, मेरे पे तनकीद करें, मेरे चलने पे, मेरे फिरने पे, मेरे बोलने पे, जो भी मेरी कमी है, मैं तेज बोलती हूँ, मैं आहिस्ता बोलती हूँ, मैं मिन मिन करती हूँ, मैं क्या बताइए, और अंदर एतमाद लाएं इल्म के साथ, तो आप देखिए कि अल्लाह ताला की मदद जरूर आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। फिर आप देखिए कि आगे चलने से पहले ये भी देख लीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद, जिसको आप कहना चाहिए कि बनफ्स नफीस, इस काम को अपनी कस्टडी में लिया। ये भी एक लीडर की बात है कि बेदार मगज हो, आंखें खुली रखे, खुद करता नहीं है, करतेवों को देखता जरूर है। जैसे हजरत सुलेमान ने बैतुल मकदस खुद नहीं बनाया, लेकिन जिन्नों से बनवाते थे, खुद खड़े रहते थे। आपका अपना इंटरेस्ट कायम रहना आपकी टीम को और आपके हेल्पर्स को जिंदा कर देता है कि ये खुद भी तो मौजूद है ना। आप घर बैठ के खाने खा रहे हैं पी रहे हैं और उन्हें कहते हैं चल शाबाश कर मेरा बच्चा ये काम, वो बच्चा कितना को काम करेगा। तो जो आपका पर्सनल इंटरेस्ट किसी चीज़ में होता है ना, वो दूसरों को उस काम पे जमाते हैं, वो और भी जोश से करते हैं। खैर, वल्लाहु समीउन अलीम कहकर बता दिया, करना और ना करना बराबर नहीं है। एक काम का हसन दर्जे पे करना और एक का बस चल चलाओ करना, ये समीउन अलीम के नोटिस में है। अबू सुलेमान दमिश्की हैं, कहते हैं कि वो खुरूज के बारे में तुम्हारे मशवरों को सुनने का समी है। ये जो मशवरे दे रहे थे ना कि बाहर जाके करना है या नहीं करना, वो सुन रहा था और वो जानता है कि कौन किस नीयत और किस कैफियत से निकल रहा है, और वो जानता है कि कौन शहादत की मोहब्बत को छुपाए हुए। आप सब घर से आते हैं, उस वक्त भी आपके साथ ये होता है। देखिए, ये भी लिख ले, ये सब कुछ सिर्फ मैदाने जंग में नहीं होता। आप यहाँ आते हैं, आप नींद छोड़ते हैं, आप अपने घर को ऐसे उल्टा पुल्टा छोड़कर आ जाते हैं, या ठीक काम कराते हैं, शाम का खाना बना के आते हैं कि नहीं करते, अल्लाह ये आपकी एक एक तकलीफ को देख रहा होता है, वल्लाह ही देखता है। हम घर में हैं तो सकता है हमारे घर शीशे की तरह साफ हो, और मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है। जो नहीं कहीं जाते उनके घर को शीशे जैसे नहीं है, वो और ही बिखरे होते हैं। लेकिन अल्लाह को आपकी एक एक तकलीफ का पता है, आपके अंदर का तकवा, आपकी तड़प, आपकी तलब, अल्लाह को सब कुछ पता है। खैर, आगे चल के देखते हैं क्या होता है।